शांति। महाराष्ट्र के संत एकनाथ ने भागवत के अनुवाद एकनाथी भागवत में गोपियों की अवस्था का वर्णन लिखा है। कृष्ण गाती गीती कृष्ण ध्याति चित्ते हे ची कृष्ण होती कृष्ण ध्याने। कृष्ण का गुणगान करते हुए कृष्ण का ध्यान करते हुए गोपिया क्या हो गई, स्वयं ही कृष्ण हो गई। इतना डूबी है कृष्ण प्रेम में कि उन्हें पता ही नहीं क्या हो गया। वो समझने लगी हम ही कृष्ण हैं, जो जिसकी याद में रहता है उसको याद करते 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 उसी के जैसा बन जाता है। एक दिन पवित्रता के सागर को यदि कोई याद करे और सारी चेतना उस पवित्रता के सागर पर एकाग्र हो जाए तो आत्मा स्वतः ही पवित्र होने चालू होगी। बुद्धि का सारा योग यदि उस महाज्योति पर एकाग्र हो जाए, आत्मा परमात्मा में कभी लीन नहीं होती, परंतु आत्मा को अनुभव होगा तुका मने होती तुझी माझी एक ज्योति, जैसे वो ज्योति और ये ज्योति एक हो गई है। वो और मैं अब अलग अलग नहीं रहे, हम दोनों एक हो गए, तुझी माझी होती एक ज्योति। बाइबल में जीसस क्राइस्ट को पूछते हैं तुम कौन हो, वो कहता है आई एम सन ऑफ गॉड, मैं ईश्वर पुत्र हूं। कोई दूसरी जगह उसे पूछा जाता है तुम्हारे पिता कहाँ है, वो कहता है माय फादर इज इन मी एंड आई एम इन माय फादर, मेरे पिता मुझ में है और मैं अपने पिता में हूं। किसी तीसरी जगह उससे पूछा जाता है पर तुम्हारे पिता है कहाँ, वो कहता है माय फादर दैट आर्ट इन हेवन, स्वर्ग में है। उसे पूछा जाता है कहीं और स्वर्ग कहाँ है, द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे मन में है। फिर भी पूछा जाता है आखिर तुम्हारा और तुम्हारे पिता का संबंध क्या है, और बाइबल का एक शक्तिशाली महावाक्य है जो संपूर्णता की अवस्था है, जहां पे ईसा मसीह कहता है माय फादर एंड आई आर वन, मेरे पिता और मैं एक ही हूं। पहले कहता है मैं पुत्र हूं, वो अलग मैं अलग, पहली अवस्था। दूसरी जगह कहता है वो मुझ में और मैं उसमें, और तीसरी जगह कहता है वो और मैं एक ही है। भारत के तीन वाद इस पर है, एक है द्वैतवाद, मध्वाचार्य, ईश्वर अलग आत्मा अलग, उसके बाद है विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्य, वो मुझ में और मैं उसमें, और तीसरा है शंकराचार्य, अहम ब्रह्मस्मि, वो और मैं तत्वमसि एक ही है। ब्रह्मा कुमारी में जो भगवान ने ज्ञान सुनाया, सबसे पहली अवस्था मैं आत्मा हूं, वो मेरा पिता है, शुरुआत ज्ञान की। और जब ज्ञान में आगे बढ़ते जाते हैं तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आस पास हो, तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं, दूसरी अवस्था। और आत्मा जो और आगे बढ़ती जाती है तो मैं बाप समान हूं। एक है भक्ति मार्ग, एक है सन्यास मार्ग, एक है ब्रह्मा कुमारी, तीनों में ही यात्रा चालू होती है, वो अलग मैं अलग, और फिर वो मुझ में मैं उसमें, माय फादर इज इन मी एंड आई एम इन माय फादर, और लास्ट में मैं बाप समान हूं। अब उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं, काम क्रोध निमले ठाई चे झाला स्वयमेव पांडुरंग, स्वयं ही मैं वो हो गया हूं, काम क्रोध सब कुछ चला गया, वो चेतना की अवस्था है बाप समान, कि वो और मैं एकदम एक हूं। क्या ऐसी अवस्था आ सकती है जिसमें आत्मा को अनुभव हो कि जो कुछ उस परमात्मा में है अब मुझ में है, जो जो उसमें है वो सब कुछ मुझ में है। यदि लंबा समय किसी का ध्यान किया जाए तो जिसका ध्यान किया जाता है वो सारी चीजें हम में आने लगती है। द्वापर से अब तक हमने देहधारियों का चिंतन किया, मनुष्यों का चिंतन किया, शास्त्रों का चिंतन किया, और अब भगवान आया है। तो जब वो आया है सब कुछ छोड़कर केवल उसी का चिंतन करना है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापोभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मैं तुम्हें तुम्हारे सभी पापों से मुक्त करूंगा, मेरी शरण में आ, मन मना भाव मध्याची भक्तो माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम कर, मुझे नमस्कार कर, मेरे प्रति समर्पित हो जा, ये मेरा वादा है, ये मेरी प्रतिज्ञा है, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त करूंगा, ऐसी भगवान की प्रतिज्ञा है। तो क्या हम करें जो संपूर्ण समर्पण हो जाए, और समर्पण का संबंध किसी वस्त्र से नहीं, ना किसी बैच से है, ना किसी स्थान से है, ना किसी समारोह से। समर्पण मन की अवस्था है, समर्पण स्थिति का नाम है, समारोह का नहीं। कैसी चेतना समर्पित हुई है जब वो आया है उसके प्रति। सबसे पहला समर्पण है तन का समर्पण। ये शरीर अब हमारे लिए नहीं है, सेवा के अर्थ है और तपस्या के लिए है। अब तक इस शरीर से बहुत पाप किए, इस शरीर से बहुत निंदा की उसकी, बहुत अपमान किया उसका, स्वयं आत्मा का ही अपमान किया है भोग में डुबाकर इस शरीर को। अब ये शरीर ईश्वरीय सेवार्थ समर्पित हो। बाबा ने कहा हड्डी हड्डियां दे दो तब कहीं जाकर फरिश्ता बनोगे, क्योंकि फरिश्तों को हड्डियां नहीं होती। वो हड्डियां कहाँ जानी चाहिए? ईश्वरीय यज्ञ में। तो इस देह को अब इस ईश्वरीय यज्ञ में अर्पित करना है, ईश्वरीय सेवा में, ईश्वरीय तपस्या में अपने आप को संपूर्ण बनाने का पुरुषार्थ। दूसरा समर्पण है मन का समर्पण, मन के संकल्पों का समर्पण। किसी मुरली में बाबा ने कहा है एक एक संकल्प का भोग लगाओ, और जो चीज का भोग लगाया जाता है वो चीज बहुत पवित्र होनी चाहिए। क्या मेरे एक एक संकल्प पवित्र है? क्या अर्पित किया जा रहा है? जो अर्पित किया जाए वो बहुत शुद्ध हो, बहुत पवित्र हो, और जो पवित्र अर्पित किया जाएगा वो उसे बहुत प्रिय है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योम्या भक्त्या प्रयश्यति, हे अर्जुन पत्र पुष्प और फल भी मुझे तू अर्पित कर दे तो मैं प्रसन्न होऊंगा, यदि तू संपूर्ण भाव से, मनोभाव से, समग्रता से अर्पित करे तो। भगवान को क्या चाहिए? प्रेम। वो भावना का भूखा है और प्रेम का प्यासा। उसे दिखावा पसंद नहीं, उसे आडंबर पसंद नहीं, उसे वो पसंद है जो सच्चा है। दिखाया है भक्ति में शूद्र जो थे उनको वो पंडित लोग आने नहीं देते थे। उम्भरट्यासी कैसे शिव आमी जातिहीन, रूप तुझे कैसे पाऊ त्यात आम ही दीन, वो आने नहीं देते थे। पाय ऋषि हो उदंग गाऊनी अभंग, बस वहीं पर मंदिर के बाहर ही परमात्मा याद में मगन हो जाते थे। मन का समर्पण। संकल्पों का समर्पण, भावनाओं का समर्पण, तीसरा धन का समर्पण। जो धन हमारे पास है वो वैसे भी व्यर्थ ही जा रहा है, उस धन को यदि ईश्वरीय सेवा में लगा दिया जाए तो एक का कई गुना अधिक मिल जाएगा। अभी अभी मधुबन में एक भाई ने अनुभव सुनाया था, कुमार था, अभी भी है सेवा में, पैसे उसके पास थे नहीं, एक महीना कहीं जॉब की, छोटा मोटा काम, थोड़े से पैसे मिले 100-200 रुपए, सोचा इसका क्या करूं, ये खरीदू वो खरीदू, ये चाहिए वो चाहिए, फिर बाद में सोचा ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मैं भंडारी में डाल देता हूं, और सब कुछ डाल दिए, और डालने के बाद पता चला मुझे कोई एक फला वस्तु चाहिए थी, मेरे पास तो शर्ट ही नहीं है, कम से कम वो तो खरीदना चाहिए था, और फिर सोचा गरीब है, कुमार है, फिर सोचा दे दिया ना बाबा के यज्ञ में, भूल जाओ। और कुछ दिनों के बाद सेंटर की बहन जी ने उसको एक कुर्ता और पैजामा दे दिया, कहीं से आया था, किसी दूसरे कुमार ने कहा था ये मेरे पुराने कपड़े हैं, अगर किसी को जरूरत है तो दे देना, इधर दे दिया, इधर से मिल गए। फिर सोचा कोई दूसरा कुमार है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, और उसने वो कुर्ता पैजामा भी उस दूसरे कुमार को दे दिया। और कुछ दिनों के बाद ऐसी कुछ घटनाएं हुई कि उसे अपने आप 3-4 जोड़ी कुर्ता पैजामा मिल गया, और उसने सुनाया कि एक बार और चलते चलते उसको 10 रुपए कहीं से मिल गए, सोचा क्या करूं, वो भी भंडारी में डाल दिए, और अचानक उसको ऐसी एक जॉब मिल गई जिसमें बहुत सारे पैसे मिल गए। ऐसे उसने 2-3 अनुभव सुनाए। हमारा जो धन है द्वापर से अब तक काला धन ही रहा है, किसी ना किसी का शोषण करके ही हमने वो धन कमाया है, कहीं ना कहीं से वो धन गलत तरीके से ही आया है। अब समय है जो कुछ हमारे पास है, कुछ अपने लिए रखे, कुछ भविष्य के लिए रखे, कुछ आवश्यकताओं के लिए, और चौथा भाग इस्लाम में उसको ज़कात कहते हैं, दान कर दो, ईश्वरीय सेवा अर्थ लगा दो, कई गुना अधिक होकर वापस आ जाएगा, अपने आप आएगा, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है, तुम मुझे 1 दोगे तो मैं तुम्हें 1000 दूंगा, तुम्हारा 1 कदम मेरे 1000, तन मन धन, तीसरा समर्पण। चौथा समर्पण है बुद्धि का समर्पण। बुद्धि में विशेषताएं है, अगर उसी का अहंकार आ गया तो भगवान को ऐसी बुद्धि पसंद नहीं, वो बुद्धि पसंद है जो परमात्मा सेवा अर्थ समर्पित है, वो बुद्धि जो कुशाग्र है, प्रखर है, एकाग्र है, असंख्य विशेषताएं है, परंतु उन विशेषताओं का लेश मात्र अहंकार नहीं, तो अपनी विशेषताओं को, बुद्धि की विशेषताओं को भी भगवान के आगे समर्पित कर देना, तो वो उस बुद्धि को वो कार्य में लगाएगा। और अहंकार किसका, मैं ये हूं मैं वो हूं, किसी दिन सुदेश बहन जी को हमने कहते हुए सुना था, हम सब नल है और बाबा टंकी है, पानी कहां से आ रहा है, टंकी से, नल को अहंकार हो जाए मैं पानी ला रहा हूं तो हम केवल निमित्त नल है, अगर पानी चाहे तो इस नल से नहीं किसी और नल से आएगा। लोमती जलद घेऊनी निरे, थोर गर्व ना धरी अभिवाचा, हा स्वभाव उपकार पराचा। बादलों को कोई अहंकार नहीं, हम पानी बरसाते। थोर गर्व ना धरिया विवाचा, हा स्वभाव उपकार पराचा, बुद्धि का अहंकार ना हो। क्योंकि संगम युग पर जो सेवाएं हो रही है ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा हो रही है, अगर ईश्वर हट जाए तो सेवाएं भी समाप्त हो जाएगी। उसके अतिरिक्त, उसके सिवा हम कुछ भी नहीं। जैसे ही दिखा महाभारत में, श्री कृष्ण चले गए, पांडव शक्तिहीन हो गए, अर्जुन को लूट लिया गया, जितने चारों पांडव थे, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर, सबकी शक्तियां नष्ट हो गई। कुत्ते भौंकने लगे दरवाजे पर, ताले लगने लगे, चोरियां होने लगी, ये क्या होने लगा? पता चला श्री कृष्ण तो गए, वो शक्ति उसकी थी। इसके लिए बुद्धि का समर्पण, तन मन धन बुद्धि, उसके बाद संस्कार, ये सबसे सूक्ष्म संस्कार समर्पण है। हमारे जो संस्कार है, मैं जो हूं जैसा हूं तुम्हारा हूं, क्योंकि संस्कार ऑटोमेटिक है, अपने आप काम करते, उन संस्कारों का भी समर्पण, सर्वस्व समर्पण। उसके बाद कर्म का समर्पण, कर्म किया और अर्पित, कर्म के परिणाम का भी समर्पण, ये उससे भी सूक्ष्म है। एक है कर्म का समर्पण, एक है कर्म के परिणाम का समर्पण। बहुत बड़ी सेवाएं की, असफलता मिली, वो भी समर्पित। हमको याद है मुंबई में मेगा प्रोग्राम था 2009 या 10 में, बहुत बड़ा प्रोग्राम, सारे महाराष्ट्र के लोग आ रहे थे, भाई बहने, प्रोग्राम बाहर वालों के लिए था पर सारे बीके सेवा के लिए, परंतु सुबह से रात तक, शाम तक बारिश चालू थी। सबको चिंता थी प्रोग्राम कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कंटिन्यूस बारिश, और प्रोग्राम खुले मैदान में था, और जहां पर मैं प्रोग्राम था वहां पर हर जगह छोटे छोटे कमरों में लोग योग करने लगे, बीके भाई बहने, बारिश रुक जाए, बारिश रुक जाए, बारिश रुक जाए, शाम को प्रोग्राम होने वाला है, मोहिनी दीदी आने वाले थे, दादी आने वाली थी, जयंती बहन आने वाले थे, और बारिश कंटिन्यूस, और वो प्रोग्राम था बाहर वालों के लिए, और सब ने योग लगाया कि बारिश रुक जाए, बारिश रुक जाए, परंतु जैसे शाम हुई बारिश तो और ही ज्यादा बढ़ गई, और बारिश अंतिम समय तक, बिल्कुल रात तक भी नहीं रुकी। वो प्रोग्राम केवल बीके खड़े थे छाता लेकर, और कौन खड़े रहेगा बाहर वाले। चाहे सफलता हो या असफलता हो, कर्म और कर्म के परिणाम को भी समर्पित कर देना। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, बाबा को नहीं पता कि हमारा प्रोग्राम है? बाबा ने कम से कम थोड़ी तो मदद करनी चाहिए थी, बारिश तो बिल्कुल नहीं रुकी, कोई भी नहीं आया प्रोग्राम में बाहर के, केवल व्हाइट ड्रेस पहन के बी के छाता लेके खड़े थे ग्राउंड में। और सातवां समर्पण है संबंध संपर्क का समर्पण। जो हमारे संबंध है उनको भी बाबा के सामने समर्पित कर देना। यदि कोई युगल है, पति और पत्नी, अगर वो संबंध बाबा के सामने रखा जाए कि बाबा ये हमारा संबंध है, तो बाबा उस संबंध को स्वीकार करेगा? यदि उसमें अपवित्रता है तो रिजेक्ट हो जाएगा वो संबंध। आंखों के सामने अपने संबंध लाना है, मेरा किसी व्यक्ति के साथ किस तरह का संबंध है, घृणा है, नफरत है, आसक्ति है, प्रेम है, क्या है, आत्मिक प्रेम है कि जिस्मानी प्रेम है, वासनात्मक प्रेम है कि रूहानी अलौकिक प्रेम है, क्या है। यदि ऐसा संबंध, हम अपना संबंध भगवान के सामने रखेंगे, तो क्या वो खुदा इस रिश्ते को तस्लीम करेगा, स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट कर देगा? इसलिए अपने संबंधों को क्या करना है, पवित्र बनाने हैं। जिस संबंध में मोह की बदबू है वो पवित्र नहीं है। जिस संबंध में शरीर का आकर्षण है वो तुच्छ है। तो ऐसे सात प्रकार के समर्पण है, तन मन धन बुद्धि संस्कार कर्म और कर्म के परिणाम। जो कुछ हो रहा है उसको स्वीकार करना है जीवन में। कृष्ण निंदा घड़ली मनुन महार जन्म प्राप्ति। संत कहता है शायद किसी जन्म में कृष्ण निंदा की थी, इसलिए इस जन्म में शूद्र बना हूं, किसी और जन्म का परिणाम है। तो कर्म और कर्म के परिणाम का भी समर्पण और अंतिम संबंध को समर्पण। तो ऐसे सात प्रकार के संबंध, सात प्रकार के समर्पण और हमारा ये जीवन भगवान के इस ईश्वरीय यज्ञ के प्रति समर्पित हो। अच्छा, ओम शांति।